मित्रों, हर रविवार की तरह अब हम फिर तैयार हैं पठामी संस्कृतम कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत पढ़ने के लिए। रेडियो मधुबन सुनने वालों के सामने मैं लीना मेहंदले एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हैं। आज हम एक बहुत सुंदर श्लोक से आरंभ करेंगे। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार एक छोटा सा कुआं उदपान होता है और जलाशय का पानी अगर उसमें आता रहे, झरता रहे, तो वह छोटा कुआं तुरंत ही संप्लुतोदके पानी से वह पूरी तरह से भर जाता है, सर्वतः पूरी तरह से भर जाता है। उसी प्रकार वेदों में से यह जो निस्त्रैगुण्य भाव है, उस भाव को ग्रहण कर लेने से, उस बात को समझ लेने से, और वही वेदों का सार है इस बात को समझ लेने से, जो ब्राह्मण है अर्थात परब्रह्म को जानने वाला है, वह विजानतः वह विशेष रूप से जानने वाला या विशेष ज्ञानी हो जाता है। तो वेदों में हालांकि बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी विद्याएं बताई गई हैं, लेकिन उनमें से जो उनका सार है वही अगर लिया जाए, और वह सार है व्यवसायात्मिका बुद्धि का, वह सार है निस्त्रैगुण्य होने का, तो उतना ही सार अगर लिया जाए तो वह सारांश मनुष्य को ज्ञान से पूरी तरह से भर देता है। और क्या है वह सारांश? तो भगवान बताते हैं कि वह सारांश इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने के लिए दिया गया है। मा फलेषु कदाचन, तुम कभी भी ये मत कहो कि फल को भी मेरे अधिकार के लिए दिया गया है, क्योंकि फल तुम्हारे अधिकार की बात नहीं है। इस वेदों के सार को तुम समझो। माँ कर्म फल हेतुर्भूः, और कर्म फल की अपेक्षा तुम मत रखो, उसे अपना अधिकार मत समझो, और उसका जो संग है अर्थात उसके प्रति जो मोह है, उस मोह को तुम छोड़ दो। और चूंकि फल नहीं मिलने वाला है तो मैं काम ही क्यों करूं, इस प्रकार अकर्मणी होने की बात भी मन से निकाल दो। कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है और कर्म करना तुम्हारे लिए योग्य है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, इसलिए फल की आसक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लेकिन यह भी अनुचित है अगर तुम कहो कि चूंकि फल नहीं मिलने वाला तो जाओ मैं काम ही नहीं करता, इस बात की तुम्हें अनुमति नहीं है। इसलिए कर्म तो करना है और कर्म के प्रति अकर्मण्यता नहीं रखनी है, लेकिन फल के प्रति आसक्ति भी नहीं रखनी है। इस प्रकार जो मनुष्य कर पाएगा वह योगी हो जाएगा, वह योगस्थ हो जाएगा। इसको अगले श्लोक में समझाते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। तो इस प्रकार तुम योगस्थ हो जाओ और योगस्थ हो करके तुम कर्म करो, संगम त्यक्त्वा फल की आसक्ति को छोड़ करके, फल का संग पाने की इच्छा छोड़ करके तुम काम करो। तो हे धनंजय, सिद्धि और असिद्धि को सम रूप से देखना सीखो, क्योंकि इस प्रकार का समत्व जो है वही सच्चा योग है। तो इस प्रकार यह गीता का एक बहुत ही परम उच्च आदर्श बताया गया है कि कर्म भी करना है, अकर्मण्य भी नहीं होना है, और फल की आसक्ति भी नहीं रखनी है, फल के प्रति समदृष्टि रखनी है। भगवान आगे कहते हैं, दूरेणैह वरम कर्म बुद्धियोगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। अर्थात दूरेण, दूर से ही, इहवरम, ये संधि है ही और अवरम। अवरम कर्म अर्थात जो कम प्रति का काम है, जो छोटा कर्म है, क्षुद्र कर्म है, अवरम छोटा या क्षुद्र कर्म है, उसका तुम त्याग करो। और यह त्याग कैसे संभव होगा? तो बुद्धि योगा धनंजय, हे धनंजय, यह छोटे कर्म को त्याग करना यह बुद्धि योग के द्वारा तुम्हारे लिए संभव है। इसलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए तुम उस बुद्धि की, उस व्यवसायात्मिका बुद्धि की शरण में जाओ, उसी को पकड़े रहो, उसी का आंचल पकड़ करके रहो। क्योंकि जो फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनकी सोच ही छोटी है और उन्हें मैं कृपण कहता हूँ। कृपण इस कारण कि उनके पास ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो उत्तम बात ग्रहण करने के लिए है उसको छोड़ करके वे उत्तम से कम प्रति की बातें स्वीकार कर लेते हैं, वो फल की इच्छा रखते हैं। यही एक क्षुद्रता की बात है। तो हम ऐसे भी कहते हैं कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। अर्थात लेने के लिए तो वेदों से बहुत कुछ है, लेने के लिए तो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, लेने के लिए तो फलत्याग की भावना है, लेकिन जो क्षुद्रता पूर्ण लोग हैं, कंजूस लोग हैं, कृपणाहा, जो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग हैं, वे फल की इच्छा रख रहे हैं और फल की लालसा में पड़े रहते हैं। इसलिए उनका जो कर्म है वह कर्म भी क्षुद्र हो जाता है, वह उच्च प्रति का, उच्च कोटि का वह कर्म नहीं है। क्योंकि उच्च कोटि का कर्म तभी कहा जाएगा जब उसमें फल की इच्छा नहीं रहेगी। तो मनुष्य को यह संभव है, बुद्धि के द्वारा यह संभव है कि मनुष्य फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करे, लेकिन उस प्रकार की बुद्धि की उपासना ना करके, उस प्रकार की बुद्धि में प्रविष्ट ना हो करके फल की इच्छा वाली बुद्धि अगर मनुष्य रखता है तो उसे कृपण ही कहा जाएगा। लेकिन हे धनंजय, मेरा तुमसे यह सुझाव है कि तुम ऐसे क्षुद्र कर्म को, फलेच्छा रख करके किए गए क्षुद्र कर्म को, क्षुद्र कोटि के कर्म को तुम दूर से ही छोड़ दो, दूर से ही उसका तुम त्याग करो और प्रयास करो, अन्विच्छ, कि तुम व्यवसायात्मिका बुद्धि को अपनाओ और निष्काम या फलेच्छा त्याग करके तुम अपने कर्म को करते रहो। आगे कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अब यहाँ दोबारा से एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि योगः कर्मसु कौशलम्। योग किसे कहेंगे? तो अपने कर्म में पूरा कौशल लगा दो, पूरी एकाग्रता से उसमें कौशल हासिल करो, तो वह भी योग है। और इसके पहले कहा है कि बुद्धि युक्तो जहाति, जो बुद्धि से युक्त है वह जहाति, उसे मुक्ति मिल जाती है। और वह बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो उभे सुकृत दुष्कृते, अच्छा फल और बुरा फल दोनों ही के प्रति समबुद्धि अगर रहे, वह बुद्धि मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। और यही योग है। इसलिए इस योग को तुम करो, इस योग में तुम युज्यस्व लग जाओ, तन मन से इस योग में तुम लग जाओ। और यह स्मरण रहे कि कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। तो यहाँ कर्म कुशलता की भी बात कही है। तो एक तरफ पहले अकर्मण्य न होने का संदेश दिया और चेतावनी दी कि देखो तुम्हें फल को त्यागना है लेकिन अकर्मण्य नहीं होना है। लेकिन इतने पर संतुष्टि भी भगवान को नहीं है, वो आगे और चेतावनी देते हैं कि केवल अकर्मण्य नहीं होना अर्थात कर्म करते रहना यह भी पर्याप्त नहीं है, उस कर्म को कुशलता पूर्वक करते रहना, मनोयोग से करते रहना, उसमें एकाग्रचित्त होकर के उसमें कुशलता हासिल करना और कुशलता पूर्वक उस कर्म को निभाना यह भी आवश्यक है। तो सिर्फ ये नहीं कि मुझे फल नहीं मिलने वाला तो जाओ मैं काम ही नहीं करता, यह जिस प्रकार गलत है उस प्रकार यह भी गलत है कि मुझे फल नहीं, फल की लालसा नहीं करनी तो जहां मैं अच्छा काम नहीं करता, यह भी गलत है। और केवल काम कर देने से बात नहीं बनती, कर्तव्य पूरा नहीं होता, व्यवसायात्मिका बुद्धि प्रकट नहीं होती या उसका उसका दर्शन नहीं होता। वह व्यवसायात्मिका बुद्धि प्रकट में उतरे, व्यवहार में उतरे, यह तभी होगा जब कर्म कुशलता भी वह बुद्धि हमें देगी। कर्म में कुशलता हो यह बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो मानती हूँ कि गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करो और फल के प्रति मोह और आसक्ति त्याग करके करो। जो भी फल मिले, सुकृत या दुष्कृत, अच्छा या बुरा, उसे समभाव से स्वीकार करो। लेकिन कर्म के लिए नहीं कहा कि समभाव से कर्म करो, अच्छा करो या बुरा करो, जो भी करो ठीक ही है। नहीं, कर्म को अच्छा ही करना है, कुशलता पूर्वक ही करना है। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ भगवद गीता में हमें मिलता है। तो मित्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।